नमस्कार और हमारे आज के विशेष सत्र में स्वागत है। आज हम साइबर अपराध की दुनिया की कुछ ऐसी कहानियों, ऐसी सच्चाइयों पर गौर करेंगे जो अक्सर सामने नहीं आ पाती। हमारे साथ एक साइबर एक्सपर्ट है और हम उनकी मदद से ये समझने की कोशिश करेंगे।
नमस्कार।
तो मकसद ये जानना है कि कैसे तकनीक की छोटी छोटी कमजोरियां बड़े साइबर हमलों का जरिया बन जाती हैं, और ये भी कि कैसे बच्चे अनजाने में इसका शिकार या शायद हिस्सा भी बन सकते हैं।
बिल्कुल।
तो चलिए इस विषय की गहराई में उतरते हैं।
जी।
शुरुआत एक बहुत ही चौंकाने वाले मामले से करते हैं।
जी।
एक पूरे परिवार के फोन हैक हो गए थे।
हाँ, मैंने सुना है इसके बारे में।
हैकर को घर के अंदर की हर छोटी बड़ी बात, यहाँ तक कि घर के लोगों की आपस की बातचीत भी पता चल रही थी।
बाप रे।
जैसे किचन में क्या बन रहा है, कौन छत पर है, सब कुछ। और तो और, उसने एक सदस्य के नंबर से दूसरे को धमकी भरे मैसेज भेजने शुरू कर दिए।
अच्छा।
किस तरह के मैसेज? जैसे कि पड़ोस की बच्ची से माफी मांगो वरना बैंक अकाउंट खाली कर दूंगा, ऐसी बातें। बात इतनी बढ़ गई कि हैकर ने आंगन में बैठे बच्चे पर स्नाइपर गन लगाने तक की धमकी दे डाली।
ओह, ये तो बहुत ही गंभीर बात है। वाकई रोंगटे खड़े कर देने वाला मामला। हाँ, तो जब इसकी जांच हुई तो जो सच सामने आया वो तो और भी हैरान करने वाला था।
क्या पता चला? कोई बड़ा हैकर गिरोह था?
नहीं, कोई बड़ा गिरोह नहीं, बल्कि उसी घर का 9 साल का बच्चा था।
क्या, सिर्फ 9 साल का बच्चा?
यकीन नहीं होता।
हाँ बिल्कुल, उसने वो पैरेलल स्पेस जैसी ऐप इस्तेमाल की थी।
पैरेलल स्पेस? ये क्या करती है?
ये किसी भी ऐप का क्लोन, हूबहू नकल बना देती है। तो उसने घर के सभी सदस्यों के व्हाट्सएप अकाउंट अपने फोन पर क्लोन कर लिए थे।
और ये सब उसने सीखा कहाँ से, इतनी कम उम्र में?
ऑनलाइन वीडियोस, उसने ऑनलाइन वीडियो देखकर हैकिंग सीखी।
कमाल है। पर क्यों किया उसने ये सब? क्योंकि उसे अमेज़न या डोमिनोज से कुछ ऑर्डर करने से मना किया गया था, तो उसे गुस्सा आ गया और उसने ये सब करना शुरू कर दिया।
सिर्फ गुस्से में?
हाँ,
ये दिखाता है कि भाई तकनीक का एक्सेस कितना आसान है। अब तकनीकी ज्ञान से ज्यादा बड़ा दरवाजा ये एक्सेस बन गया है साइबर अपराध के लिए। बच्चे का गुस्सा भी डिजिटल हथियार बन सकता है। और ये शायद उन एप्स के डिजाइन पर भी सवाल है कि क्लोनिंग इतनी आसान कैसे है।
अविश्वसनीय। अच्छा, एक और दिलचस्प मामला था नोएडा की एक कंपनी का।
हाँ?
उनके सर्वर पे रोजाना डॉस अटैक हो रहा था, उसे इतनी रिक्वेस्ट भेजकर ठप करने की कोशिश।
डिनायल ऑफ सर्विस,
इससे तो बहुत नुकसान होता है।
हाँ, रोज लाखों का नुकसान हो रहा था। और हैरानी की बात ये थी कि उनका एंटी डॉस सिस्टम भी उसे पकड़ नहीं पा रहा था।
क्यों?
क्योंकि ट्रैफिक बिल्कुल असली यूजर्स जैसा लग रहा था, कोई पहचान ही नहीं पा रहा था।
बिल्कुल ऐसा होता है। तो जब इसकी गहराई से जांच की गई तो पता चला कि ये अटैक NCR क्षेत्र के कई आम लोगों के फोन से आ रहा था।
आम लोगों के फोन से?
उन्हें तो पता भी नहीं होगा।
बिल्कुल नहीं पता था कि उनका फोन किसी हमले में इस्तेमाल हो रहा है।
खैर, जांच करते करते हम पहुंचे कनॉट प्लेस के एक रेस्टोरेंट तक।
रेस्टोरेंट? वहाँ क्या कनेक्शन मिला?
वहाँ पता चला कि रेस्टोरेंट का जो मेनू कार्ड वाला QR कोड था,
हाँ,
उसको स्कैन करने पर लोगों के फोन में चुपके से Cloud9 नाम का एक मैलवेयर इंस्टॉल हो रहा था।
ओहो, यानी रेस्टोरेंट की वेबसाइट हैक करके ये मालवेयर फैलाया जा रहा था।
एग्जैक्टली।
लेकिन क्यों? इसका मकसद क्या था? कौन कर रहा था ये?
इसके पीछे उसी कंपनी का एक पुराना इंटर्न था।
इंटर्न?
हाँ, जिसे नौकरी से निकाल दिया गया था और वो बदला लेना चाहता था।
अच्छा, तो बदला, यहाँ भी वही बात।
हाँ, उसने कुछ बाहरी हैकर ग्रुप्स की मदद ली। रेस्टोरेंट की वेबसाइट सिक्योर नहीं थी, उसे हैक किया और फिर QR कोड के जरिए लोगों के फोन में मैलवेयर डाला और उन फोन्स का इस्तेमाल करके कंपनी पर डॉस अटैक करवाया।
बाप रे, ये दिखाता है कि कैसे रोजमर्रा की चीजें जैसे रेस्टोरेंट का QR कोड कितना खतरनाक हो सकता है।
सही का। और ये इनसाइडर थ्रेट का भी उदाहरण है। कंपनी के अपने ही लोग या पुराने लोग खतरा बन सकते हैं।
तो यहाँ भी मकसद बदला ही था, जैसे उस बच्चे के मामले में गुस्सा था। लगता है तकनीकी हथियार आजकल बहुत आसानी से मिल जाते हैं, चाहे वो 9 साल का बच्चा हो या नौकरी से निकाला गया कर्मचारी।
बिल्कुल। और अक्सर देखिए, तकनीकी सुरक्षा को भेदने का रास्ता इंसानी भावनाओं से होकर गुजरता है, गुस्सा, बदला, लालच।
सिस्टम को तोड़ने से ज्यादा आसान होता है किसी इंसान की कमजोरी का फायदा उठाना।
सही का।
अच्छा, ये कॉर्पोरेट मामला तो दिखाता है कि कितने छिपे हुए तरीके इस्तेमाल हो सकते हैं। इसी तरह अगर बच्चों की दुनिया की बात करें, आजकल स्नैपचैट और डिस्कॉर्ड जैसे एप्स बहुत चलते हैं, इनमें क्या खतरे हो सकते हैं?
देखिए, स्नैपचैट जैसे एप्स में जो मैसेज गायब हो जाने वाला फीचर है,
हाँ, वो डिसअपीयरिंग मैसेजेस,
हाँ, वो बच्चों को एक झूठी सुरक्षा का एहसास देता है। उन्हें लगता है वो कुछ भी लिख सकते हैं, अभद्र या आपत्तिजनक, और कोई सबूत नहीं रहेगा। लोकेशन ट्रैकिंग फीचर भी है जो निजता के लिए खतरनाक हो सकता है।
और वो क्या कहते हैं, स्नैप स्ट्रीक वाला फीचर?
हाँ, स्नैप स्ट्रीक मतलब रोज दोस्तों को स्नैप भेजने की होड़। ये अक्सर बच्चों में आपस में तुलना और मानसिक दबाव, डिप्रेशन तक पैदा कर सकता है।
और डिस्कॉर्ड, वो भी काफी पॉपुलर है गेमर्स में।
डिस्कॉर्ड पर पहचान छिपाकर बात करने की सुविधा है। एनोनिमिटी, ये कई बार इसे ग्रूमिंग या साइबर बुलिंग जैसी अवैध गतिविधियों का अड्डा बना देती है।
हाँ।
पेरेंट्स को ये समझना होगा, जैसे वो बच्चों को सड़क पर अनजान लोगों से सावधान रहने को कहते हैं ना,
बिल्कुल
वैसे ही ऑनलाइन दुनिया में भी सावधानी बरतने की शिक्षा देना बहुत जरूरी है, और उनकी डिजिटल एक्टिविटीज पर थोड़ी नजर रखना भी। इसे अनदेखा नहीं कर सकते।
तो आज की बातचीत से ये तो साफ है कि साइबर खतरे हमारी सोच से कहीं ज्यादा करीब हैं और बहुत अप्रत्याशित तरीकों से आ सकते हैं।
हाँ।
एक 9 साल का बच्चा हो या नौकरी से निकाला गया कर्मचारी, कोई भी आसानी से उपलब्ध तकनीक का गलत इस्तेमाल कर सकता है, और अक्सर वजह मानवीय भावनाएं होती हैं।
बिल्कुल, और चिंता की बात यह है कि तकनीक जितनी तेजी से आगे बढ़ रही है, हमारी जागरूकता और सुरक्षा के तरीके उतने ही पीछे रह जाते हैं।
हमें लगातार सीखते रहना होगा। और जाते जाते एक सवाल सबके लिए छोड़ जाते हैं सोचने को, कि जब इतनी आसानी से मिलने वाले ऐप्स और रेस्टोरेंट जैसी सामान्य जगहों का इस्तेमाल करके इतने बड़े साइबर अपराध हो सकते हैं, तो न जाने और कितने अनदेखे और आसान तरीके होंगे जिनका हमें अंदाजा भी नहीं है।
सोचने वाली बात है।
इस पे विचार जरूर कीजिएगा। अगली बार फिर मिलेंगे एक नई जानकारी के साथ। धन्यवाद।
धन्यवाद।